लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि आधुनिक प्रकार की दास्ता अर्थात मानव तस्करी का उन्मूलन हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। मैं प्रभु के महान कार्यों को याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा महान है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 77वें भजन के 12 से लेकर 15 तक के पद, जिनकी व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भजनकार प्रभु के अपूर्व कार्यों, उनके चमत्कारों और उनके सामर्थ्य का स्मरण दिलाता है। वस्तुतः प्रार्थना करते समय भक्त में इस तथ्य के प्रति चेतना जागृत होती है कि जो कुछ वह कर सक रहा था वह सब ईश कृपा का फल था। इसीलिए प्रभु के महान कार्यों पर चिंतन करता है, प्रभु के कार्यों और ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह नहीं करता और न ही उन पर अटकलें लगाता है, अपितु उसमें यह चेतना जागृत होती है कि ईश्वर कभी परिवर्तित नहीं होते, वे आदि से अनादि तक एक समान रहते हैं। जबकि मनुष्य बदल जाता है, वह हर पल बदल सकता है। भरोसे और विश्वास के पुरुष से वह शक, शुभा और संदेह के अंधेरे में चला जाता है। श्रोताओं, इस तथ्य पर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि बाइबल का पाठ और अध्ययन तथा प्रार्थना एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। 77वें भजन का रचयिता सर्वप्रथम यह घोषित करता है कि प्रभु ईश्वर पवित्र हैं, वे पापी और नश्वर मनुष्यों से बिल्कुल अलग हैं। द्वितीय, ईश्वर स्वतः को तथा अपने कार्यों को मनुष्यों के जीवन में ही प्रकट कर देते हैं। तृतीय, वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ईश्वर अनंत हैं। एक प्रकार से 77वें भजन का प्रार्थी एक बार फिर ईश्वर और उनके अपूर्व कार्यों की पुनर्खोज में सफल हो जाता है। कहता है, मैं प्रभु के महान कार्यों को याद करता हूँ, मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। श्रोताओ, जब मनुष्य को ईश्वर की जरूरत पड़ती है तब वह उनके अपूर्व कार्यों पर मनन करने लग जाता है। सच तो यह है कि जब हम मनुष्य प्रार्थना करते हैं तब किसी न किसी चीज की कामना करते हैं, किसी न किसी चीज की अपेक्षा रखते हैं और 77वें भजन के प्रार्थी की तरह ही हमारी भी सोच होती है कि जिस ईश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी और उसके राष्ट्रों पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया है, वे ईश्वर हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमारे सब कामों को सफलता दें। सच तो यह है कि 77वें भजन का प्रार्थी ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर के बारे में बात करता है और ईश्वर से बात करता है। वह स्वीकार करता है कि ईश्वर ने महान कार्य किए हैं। प्रभु ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तथा अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सब मनुष्यों का उद्धार किया। इसलिए ईश्वर के महान और अपूर्व कार्यों पर हम मनन चिंतन करें, उनसे प्रार्थना करें तथा कदापि यह न भूलें कि हम सब मुक्ति प्राप्त मानव परिवार के सदस्य हैं। हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी।
है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी। है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी। है परमेश्वर की ये धरती।
आगे 77वें भजन के अंतिम 6 पदों में हम पढ़ते हैं, तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देख कर कांप उठा, अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी, तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया, पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र से होकर जाता था, गहरे सागर से होकर तेरा पथ जाता था, तेरे पथ चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। श्रोताओ, 77वें भजन के अंतिम 6 पद अपने आप में एक पूरे भजन की तरह प्रतीत होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पद भजनकार की प्रार्थना को जारी रखते हैं। अपनी प्रार्थना में इस तथ्य के प्रति भजनकार में चेतना जागृत होती है कि हालांकि धरती पर वह एक छोटा सा महत्वहीन प्राणी है, ईश्वर के लिए वह महत्वपूर्ण है तथा ईश्वर उसके प्रति अनवरत चिंतित रहा करते हैं। 77वें भजन के अंतिम 6 पद स्तोत्र ग्रंथ के अन्य भजनों के सदृश प्रभु के महान कार्यों के प्रति अभिमुख हैं। सर्वप्रथम सृष्टि में संपन्न कार्य और फिर मुक्ति के कार्य। 16 से लेकर 18 तक के पदों में ईश्वर के उन कार्यों का बखान किया गया है जब वे ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्तियों के कोलाहल से सृष्टि की संरचना में लगे थे और जिसे उन्होंने मात्र अपने श्रीमुख के शब्द से संपादित कर दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के प्रथम 2 पदों में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और सागर पर ईश्वर का आत्मा विचरता था। आगे 19 से लेकर 21 तक के पदों में मिस्र की गुलामी से प्रतिज्ञात देश इसराइल की ओर जाती इसराइली जाति के निर्गमन का संदर्भ दिया गया है। इसराइली जाति इस जटिल यात्रा को ईश्वर के सामर्थ्य से ही पूरा कर पाई थी। निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय के प्रथम 2 पदों में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। प्रतिज्ञात देश की यात्रा के विषय में निर्गमन ग्रंथ के 23वें अध्याय के 20वें पद में हम ईश्वर के मुख से निकले शब्दों को इस तरह पाते हैं, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। इस तरह 77वें भजन का रचयिता ईश प्रजा के इतिहास की घटनाओं को याद कर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता है। श्रोताओ, इस भजन पर मनन कर लेने के बाद इस बात के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि चाहे प्राचीन व्यवस्थान के लोगों द्वारा मंदिर में प्रार्थना करने वाला भक्त हो या फिर आज गिरजाघरों में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, सबके भाव एक ही प्रकार हैं। 77वें भजन में इसी तथ्य के प्रति चेतना जागृत की गई है कि ईश्वर से अलग होने की पीड़ा हमें प्रार्थना को जगाती है। चाहे किसी खतरनाक बीमारी का सामना करना हो, किसी परिजन की मृत्यु का दुख हो या फिर युद्ध और संघर्ष की स्थिति में हम प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करते हैं और अपने दुख में ईश्वर को पुकारते हैं तथा सांत्वना की आशा करते हैं।
क्योंकि उसी ने अतुल सिंधु पर भूखी नींव जमाई, प्रबल प्रवाहों पर भी उसने धरती अचल बनाई, प्रभु के ऊंचे गिरि पर चढ़ ले कौन मनुज्य है ऐसा, पावन थल पर खड़ा हो सके भला कौन है वैसा, है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी, है परमेश्वर की ये धरती। कलंक रहित हूँ शुद्ध हृदय हो जिसका, रमता नहीं व्यर्थ बातों में जिसका मन हो ऐसा, जो न पड़ोसी से छल करके झूठी कसमें खाए, स्वामी दे आशीष उसी को पुरस्कार वो पाए, है परमेश्वर की ये धरती और संपदा सारी, सारा जग सब लोग उसी के करता वो रखवारी।